अब आगे हम देखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी का तीसरा यानी आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जो बुनियादी तौर पे अब यहाँ से एक और टॉपिक होगा। आप चाहें तो आयत नंबर 35 से 37 इसको टॉपिक दे सकते हैं, जन्नत में दाखला, तीसरा एजाज़। अभी तक दो देख चुके हम, फरिश्तों को झुकाने वाला और इसी तरह इल्म दिया गया। अब तीसरा एजाज़ मिलेगा, जन्नत में दाखला। इसी तरह हम करेंगे, पहले आयतों को साथ साथ हल्का सा टच करके फिर उसके अंदर से कुछ चीज़ों को अपने लिए निकालेंगे। वकुलना, और हमने कहा, किसने कहा? अल्लाह ताला ने कहा, या आदमु, ए आदम, सिर्फ आदम को पुकारा, क्या उस्कुन, रहिए, ठहरिए, स्टे करें, कौन, अंता, तुम, आप, वह जौजुका, और आपकी बीवी, कौन थी ये? हव्वा थी। ये कहाँ से आई? अल्लाह ताला ने इनको आदम अलैहिस्सलाम की पसली में से पैदा किया, उनको तन्हाई का एहसास ना हो उस वजह से। डिटेल बाद में देख सकते हैं हम लोग। कहाँ दाखिल हों? अलजन्ना, जन्नत में। ये कौन सी जन्नत थी? क्या ये वही जन्नत है जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई आखरत के लिए, के बाद, क़यामत के बाद, या ये कोई दुनिया पे बाग था या कोई तीसरी जन्नत थी? तो इन सब के बारे में अल्लाह ताला ने हमें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी रह गई बात कि वो जन्नत थी तो वहाँ से फिर निकाले क्यों गए? अल्लाह का प्लान ही ऐसे था। ठीक है, हाँ, क़यामत के बाद अल्लाह ताला का जन्नत के बारे में ये कानून है कि एक दफ़ा जिस आँख ने जन्नत की कोई नेमत देख ली, फिर वो नेमत से महरूम नहीं होगा। लेकिन अभी अल्लाह ताला का ये प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया, बस कहा कि इससे निकल जाओ। जब उस जन्नत में रखा था तो उसके बारे में सूरह तौहा की आयत 118 और 119 से पता चलता है कि क्या कहा था। इन्न लका अल्ला तजुअ फ़ीहा वला तारा व अन्नक ला तदमाउ फ़ीहा वला तदहा। यहाँ आपके लिए सारी आसाइशें मौजूद हैं, यानी ना आपको भूख लगेगी और ना आप बरहना होंगे, यानी उरियानी नहीं होगी, और ये कि ना यहाँ आपको प्यास तंग करेगी और ना धूप सताएगी। तो ये कोई भी जन्नत हो सकती है, इससे अमल का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वहाँ जाके करना क्या है? वकुला, और खाइए आप दोनों। कौन दोनों? आदम और उनकी बीवी यानी हव्वा अलैहिस्सलाम। मिन हा, इसमें से। हा क्या है इधर? अलजन्ना। फौरन इसके ज़मीर खींचें आप, जैसे हा से आप एक हल्का सा एरो ले के जन्ना के ऊपर लगा दें तो आप समझ जाएंगे इस जन्नत से। कितना खाओ? रागादन, खुला, कसरत से खाओ, वाफर खाओ, रगबत से खाओ, जैसे रागाबन, इसी तरह रागादन, खूब अच्छा खाओ। कहाँ से खाओ? हाय सुशी तुमा, जहाँ से तुम दोनों चाहो। हाँ, बस एक चीज़ है, क्या? वला तकरबा, ना आप दोनों करीब जाएं। कौन दोनों? आदम और हव्वा। किसके करीब ना जाए? हाजी शजरा, इस दरख्त के। हाजी ही में ही जो है शजरा की वजह से मुअन्नस है, यानी इस दरख्त के करीब ना जाए। ये कौन सा दरख्त था? शजरे ममनुआ, यानी वो दरख्त जिससे मना कर दिया गया। अगर चले गए तो क्या होगा? फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, फिर आप दोनों ज़ालिमों में से हो जाएंगे, एक नहीं बल्कि दोनों ज़ालिम हो जाएंगे। अच्छा, अब ये हुक्म तो पूरा हुआ, आगे क्या हुआ? अगली आयत 36, फ़अज़ल्लहुमा, पस बहकाया या फिसलाया इन दोनों को। किन दोनों को? आदम और हव्वा को। अज़ल्ला का लफ्ज़ होता है बिला इरादा फिसलना, यानी ना आदम का इरादा था ना हव्वा का था, बस बिला इरादा फिसल गए। किसने फिसलाया? शैतान ने। कौन सा शैतान था? वही शैतान जिसको इब्लीस कहा गया। कहाँ से फिसलाया? अनहा, उससे। अनहा से फिर दो बातें ली जाती हैं, एक तो मुराद है कि उस दरख्त से फिसलाया जिससे मना किया गया था, और बाज़ कहते हैं अल्लाह के हुक्म से फिसलाया, यानी जो अल्लाह ने कहा था उस करने से फिसला दिया। नतीजा क्या हुआ? फ़अख़रजहुमा, पस उसने निकलवा दिया इन दोनों को। किस में से? मिम्मा काना फी, जिसमें वो दोनों थे। कौन दोनों थे? आदम और हव्वा। किसमें थे? जन्नत में। इस नाफरमानी का नतीजा क्या निकला? वकुलना, और हमने कहा, किसने? अल्लाह ताला ने। इह बितू, उतर जाओ। इह बितू खबूत, ऊपर से नीचे गिरना, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम सारे यहाँ से उतर जाओ। बादुकुम लिबादिन अदू, तुम में से बास बास के दुश्मन हो गए। कौन किसका दुश्मन हो गया? पहली बात, शैतान इंसान का दुश्मन हो गया, और दूसरी बात, इंसानों में ही इंसान एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बास रिश्ते भी एक दूसरे के लिए दुश्मन होते हैं। सूरत तगाबुन की आयत 14 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुवल लकुम फ़ाहज़रूहुम। अहले ईमान, यकीनन तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहो, यानी कि इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के हुक्म से दूर ना कर दे। ठीक है, तो कौन किसका दुश्मन है? पहली बात, शैतान इंसान का दुश्मन है, और दूसरी बात कि इंसानों में से भी बास इंसानों के दुश्मन है। सूरह फातिर आयत 6 में भी आता है कि इन शैतान लकुम अदू, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुवा, बस तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो। अब क्या हुआ? कुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदू, निकल जाओ। कहाँ से उतरो? जन्नतों से नीचे आओ, या आसमान से नीचे ज़मीन पे आ जाओ। क्या होगा? बास में से बास दुश्मन है। ये जो पहला इखबितु है ना, इसका हुक्म लिख लें, फिर आगे बात आएगी तो वाजे होगी। कहाँ से उतरो? जन्नत से आसमान दुनिया पे आ जाओ। दो दफ़ा इखबितु का लफ्ज़ आएगा इसमें, आप देखेंगे। पहला इखबात क्या था? जन्नत से आसमान दुनिया। वलकुम फिल अर्दी, और तुम्हारे लिए ज़मीन में। किसके लिए? कुम का लफ्ज़ आ गया अब यहाँ। आदम और हव्वा तो दो थे, लकुमा होना चाहिए था, ड्यूल नहीं या जमा। मतलब ये कि आदम, हव्वा और उनकी पैदा होने वाली औलाद, इसलिए यहाँ लकुम जमा है। फिल अर्दी, ज़मीन में। मुस्तकर्रुन, ठिकाना है। व मताउन, और फ़ायदा उठाना है। कब तक? इलाहीन, एक वक्त तक। कौन सा है ये वक्त? क़यामत का वक्त। आप लिखेंगे इलाहीन क्या है? क़यामत तक का वक्त है, जिसके अंदर एक इंसान दुनिया में आएगा। अब यहाँ तक आप देखिए कि इन सारी बातों को देखें तो असल में यहाँ आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हो रहा है। जब आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हो गई, फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से सजदे का इनकार किया, अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर जन्नत दे दी। आप कह सकते हैं कि ये जन्नत का ट्रायल वर्जन था, और जो अमूमन फ्री होता है। आज के दौर में इस इस्तलाह को आप जानते होंगे, कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, कंप्यूटर पे कोई नई चीज़ आती है तो कहते हैं 30 डेज़ ट्रायल, 10 डेज़ ट्रायल। शुरू में फ्री देते हैं, फिर जब आप पसंद करते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं, तो फिर आपको वो लेना पड़ता है, वो आपकी मजबूरी बन जाती है। एक किस्म की ये ट्रायल थी, क्यों? कि अल्लाह ताला आदम को वो जन्नत दिखाना चाहते थे जो अमल सालेह के बाद मिलने वाली थी। अब आज इस ट्रायल के बाद क़यामत तक के लिए अल्लाह का ये फ़ैसला है कि कोई शख्स मौत के सफ़र से गुज़रे बग़ैर उस जन्नत को नहीं देख सकता। किसी को अल्लाह जन्नत ख्वाब में दिखा दे, अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि जन्नत ऐसी है। सूरह सजदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आँखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने क्या तैयार किया है। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ बहुत ही दिलचस्प हकायक है। आयत को दोबारा देखेंगे कि कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका। अब अरबी ना भी समझे ना तो उर्दू जुमले से बात को समझिएगा। जहाँ तक जन्नत में रहने की बात हुई तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा आप रहें और आपकी बीवी रहें। अलग अलग खिताब है, पहले कहा आदम को है और साथ ही का बीवी को भी ले जाएं। लेकिन उसके बाद जो बाकी लफ्ज़ आ रहे हैं, कुला तकरबा, उसमें दोनों को एक ही साथ पुकारा जा रहा है। उर्दू में ऐसे ही होगा, जैसे कोई किसी औरत से कहे कि आइए आप भी इधर अपने शौहर के साथ रह लीजिए, इस घर में आप अपने शौहर के साथ रहिए, फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठा खिताब करके कहा जाए, आप फ्रिज में से जो चाहें खाएं, आप जहां मर्जी बैठें, बस इस कमरे में ना जाइएगा, ठीक है? अब फ़र्क क्यों है? मुफस्सरीन ने इसे एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता निकाला है कि आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आप रहें और साथ बीवी को रखें, इससे ये मसला निकलता है कि बीवी को घर देना या उसके रहने का इंतज़ाम करना ये शौहर की जिम्मेदारी है। समझ में आई? यानी मर्द के जिम्मे है कि वो औरत के रहने का इंतज़ाम करे, ठीक है? लेकिन औरत अपने घर से शौहर की इजाज़त के बगैर खा पी सकती है। बात समझे? कितने लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया? यानी जहाँ रहने की बात थी तो शौहर को कहा आप इसको रखें, आप जिम्मेदार हैं इसके रहने के। अब ये तो हो गई, औरत को ऑनर मिल गई कि देखा मियाँ का जिम्मेदारी है कि मुझे रखें। तो अब सवाल पैदा होता है कि घर तो मियाँ का है, तो फिर क्या खाने से पहले फ़ोन करूं कि मैं फ्रिज में से एक ऑरेंज खा लूं, क्या मैं एक ब्रेड को बटर लगा के खा लूं? तो नहीं, कुला है ही सुजितना कौर, औरतें इस पर अमल करती भी बहुत ज़्यादा हैं। मर्द बेचारे तो वही खाते हैं जो हम उनके आगे रख देंगे, और दिल चाहे तो रखें, नहीं तो कहेंगे आप ले आइएगा बाजार से, हैं, या वो आपको कहेंगे आप ले आइएगा, हैं। तो बहरहाल इससे मर्द की जिम्मेदारियों की तरफ इशारा है, लेकिन बीवी जहाँ से चाहे जो चाहे खा सकती है। रगतन का जो लफ्ज़ है ना, ये नेमत और रिस्क जिसके हासिल करने में कोई मेहनत और मुशक्क़त ना हो, इससे जन्नत की नेमत की तरफ इशारा है कि वहाँ खाने मेहनत से नहीं मिलेंगे, क्योंकि दुनिया में इंसान मेहनतें कर चुका है, और वो इतनी कसीर और वसी हो कि इसके कम या ख़त्म होने का ख़तरा ही ना हो। यानी खूब खाओ, किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं, कोई फिक्र नहीं। दुनिया में खाना पास हो तो गम ये लगता है कि मोटे हो जाएंगे, हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, शुगर हाई हो जाएगी। दुनिया असल में लज्जत की जगह है ही नहीं, हम लेना चाहते हैं ना तो ख्वार होते हैं, हम जितना एक चीज़ को लेते हैं उतनी दूसरी सामने आती है। असल जो लज्जत की जगह है ना, वो जन्नत है। ये दुनिया तो ट्रायल वर्जन है, उसमें वो सारी ऑप्शंस नहीं होती जो रियल वर्जन में होती हैं, इसलिए इस दुनिया से बस गुजरते हुए गुजर जाओ और ठीक है। दूसरी बात है कि सारी जन्नत हलाल थी, खाओ पियो, हाँ बस इस दरख्त के करीब ना जाना, ये थी जन्नत की एक हराम करदा चीज़। अपने लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि सारी जन्नत हलाल थी सिवाय एक दरख्त के, और शैतान ने उसी पे हमला कर दिया। आप कहेंगे हाय कैसे थे, ना जाते तो अच्छा था ना। अच्छा, बास लोगों ने इस पे भी सवाल किया कि ये दरख्त था किस चीज़ का, और हमारे यहाँ एक बड़ी मारूफ रिवायत पेश की जाती है कि ये गंदम का था। आप बताएं कि वो कौन सा दुनिया का हिस्सा है जहाँ गंदम दरख्तों पे उगती है? जब आपको लफ्जी वजाहत की थी तो मैंने कहा था कि इसको जहन में रखिएगा कि शजर कहते हैं उस दरख्त को जिसका तना हो, तो गंदम जो उगती है उसके तो खोशे होते हैं, तो वो गंदम तो हो ही नहीं सकती। और देखिए तावीलात फिर कैसी लोग करते हैं ना, मैंने लोगों से ये भी बात सुनी है वो फिर गंदम है, उसके खाने के बाद फिर टॉयलेट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि आप जन्नत में ना करें ये इस्तेमाल। कितनी बेतुकी बात है ना भाई, कोई भी था, आपको क्या लगे, अल्लाह का हुक्म था। असल में ये आदम को सिखाना मतलूब था कि जैसे आज इस जन्नत में जाने के बाद एक जगह से रोका गया ना, तो दुनिया में जाने के बाद भी कुछ चीज़ों से रोका जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे क्या सिर्फ एक ही तो चीज़ थी ना मना, तो रुक जाते। लेकिन ज़रा आज गौर तो कीजिए, इस पूरी कायनात में सिर्फ चार चीज़ें हराम हैं, हर चीज़ हलाल है हमारे लिए। सूरत मायदा में आप पढ़ेंगे, आगे बकरा में भी आएगा अगले पारे में इंशाल्लाह। यानी आज इतनी चीज़ें अगर आप लिस्टें बनाएं ना, ग्रोसरी की, खाने की, पीने की, सब्जियों की, मसालों की, दूध की, फिर बटर की चीज़ें, फिर फला, सब कुछ हलाल है सिवाय चार चीज़ों के, वहाँ पढ़ेंगे। फिर भी शैतान उन्हीं चार में अटकाता है बंदे को। इसकी आदत क्या है कि इंसान से वो काम करवाना चाहता है जो इसको अल्लाह ताला की नज़रों से नीचे कर दे। और होता क्या है कि इसी वजह से एक इंसान अल्लाह की नेमतों से हट जाता है। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात आगे देखिए, फ़अज़ल्लहुमा, बहकाया उन दोनों को। इससे क्या पता चला कि आदम और हव्वा को शैतान ने बहकाया था, जबकि एक मारूफ बात जो बनी इसराइली रिवायतों से पेश की जाती है और क्रिश्चियनिटी के एक बहुत मारूफ अकीदे की तर्जमानी करती है, और वो क्या है कि आदम को बहकाने का सबब हवा बनी थी। सुनी भी ये बात? और बाज ने तो यहाँ तक का इसी वजह से उसको पीरियड्स की पेन होती है, या पीरियड्स की जो तकलीफ है ये एक अजाब के तौर पे रखी गई। ये मन घड़त बातें हैं। कुरान कह रहे फजल लहुमा, उन दोनों को शैतान ने बहकाया, तो गोया के इसे इस चीज़ का रद्द हो गया कि औरत नहीं जिम्मा बनी थी, जरिया बनी थी, बल्कि दोनों को बहकाया गया था। और आपको पता है कि ये जो हम बड़े शौक से अपने आप को वोमेन कहते हैं, ये क्या है? ये तो WOOMEN है ना, असल में ये WOWMEN था। वो कहते हैं तबाह करने वाली, और मैन कहते हैं मैन को। आप इस वुमेन का तर्जमा करें तो मर्द को तबाह करने वाली, ये इसी वजह से टाइटल दिया गया। और आज आप पढ़िए बाइबल के अंदर यही कहानी है, ईव के बहकाने की वजह से आदम ने फल चखा। ईव कहते हैं वो हवा को, इसकी वजह से औरत हकीर है और वट एवर, तो ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की, और वो क्या कि आदम अलैहिस्सलाम के पास दुनिया का इल्म था ना, वअल्लमल आदम अलअस्मा कुल्लहा, इसके बावजूद शैतान के शर से नहीं बच सके। इससे क्या पता चला कि शैतान के हथकंडों से और उसके ट्रिक्स से बचने के लिए इंसान को इल्मे वही की ज़रूरत है। इंसान जितना दुनियावी उलूम में पढ़ता जाता है उतना शैतान के हाथों में तर निवाला बनता जाता है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि फ़लाँ तो इतना समझदार है, फ़लाँ तो इंटेलेक्चुअल है, फ़लाँ तो इतनी अच्छी बहस करता है, वो तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो इतनी अच्छी उर्दू बोलता है। नहीं, दुनिया की कोई तालीम आपको शैतान के वार से नहीं बचा सकती। और ये जो लफ्ज़ है ना अज़ल्लहुमा, ज़ल्ला का मानी अरबी ज़ुबान में होता है लغزش, मिस्टेक, स्लिप करना, जैसे आप चलते चलते पाँव स्लिप कर लेते हैं। इज़लाल कहते हैं किसी को लغزش देना, यानी आदम और हव्वा को शैतान ने लغزش दी। तो इससे पता चला कि दोनों को शैतान ने बहकाया, और क्या हुआ, निकलवा दिया उसमें से। मिम्मा का नफी फी ही से मुराद है जन्नत की नेमतों में, यानी जिस नेमत में थे उसमें से निकलवा दिया। छोटा सा एक सवाल यहाँ उठता है जिसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन लोग उठाते हैं कि जी ये आदम और हव्वा को बहकाने के लिए जन्नत में कैसे पहुँच गया, अल्लाह ने तो जन्नत में इसको नहीं रखा था। तो बात यह है कि शैतान को किसी को बहकाने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वसवसे डाल सकता है। वसवासिल खन्नास, सूरत नास में हम पढ़ते हैं, बाहर रह के भी इसमें डाला होगा। और सूरत अल आराफ में हम पढ़ेंगे आयत नंबर 21 में आता है कि वकासवहुमा, और उसने उन दोनों के सामने कस्में खाई, क्या, इन्नी लकुमा लमिनन्ना सहीन, बेशक मैं तुम्हारे खैर ख्वाहों में से हूँ। इससे लगता है कि आमना सामना भी था। तो कैसे पहुँचा? मुफसरीन कहते हैं कि नेमतों के एतबार से जन्नत में वो नहीं जा सकता था, लेकिन वसवसे डालने के लिए वो कहीं भी जा सकता था, शक्ल बदल के चला जाए वल्लाहु आलम, लेकिन अपना काम कर गया। फिर इससे एक और बात पता चलती है, और वो क्या कि शैतान का अल्टीमेट गोल क्या है, कि हम जन्नत से निकल जाएं। पहले दिन से उसने कस्में खाई हैं, इस पे शैतानी रवैयों पे सूरह आराफ में बात होगी, और वो इसमें कामयाब। और कमिटमेंट कितनी है, अभी कहा कि अल्लाह मैं इनको बहकाऊंगा दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, और फौरन काम कर दिया। हमारा हाल क्या है कि हम दावे करते हैं और दावे करके जाके सो जाते हैं और वक्त गुजर जाता है। यानी कोई काम करना सीखे तो शैतान से सीखे। हुँ? वो एक बुढ़िया थी तो वो हर एक को अच्छा ही कहती थी, कोई भी उनको बुरा नहीं लगता था। तो किसी ने उनसे कहा कि अम्मा एक दिन तुम तो शैतान को भी अच्छा कहने लग जाओगी, तो कहेंगी और क्या, देखो अल्लाह ने जो काम उसके जिम्मे लगाया कितना अच्छा कर रहा है तो वो काम तो अपना कर रहा है ना। जिस तरह शैतान बुराई के काम करता है या इंसानों को जन्नत से दूर करना चाहता है, इसी तरह अगर हम नेकियों के काम करने लग जाएं तो फिर आप देखिए कि दुनिया में खैर होने लगे ना। तो इस तरीके से आदम और हव्वा जो थे वो जन्नत से निकाले गए, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ये बात पेश करके अब आखिरी हिस्सा, जिसको आप कह सकते हैं आयत नंबर 38 से 39, इसका आप टॉपिक लिख सकते हैं कि अब दोबारा जन्नत में कैसे जाएं। इसका जवाब है, इसको हम पढ़ेंगे, फिर एंड पे पूरी बात को पाइल अप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही, पस सीख ली आदम ने अपने रब से कुछ बातें। पर सीख लिए कुछ कलमे रब से आदम ने। वहां क्या था? अल्लमा, सिखाए अल्लाह ने। अब आदम ने खुद सीखे, गुना हुआ। सूरत आराफ में हम पढ़ेंगे कि जो ही आदम और हव्वा ने उस दरख्त का फल चखा, तो आदम अलैहिस्सलाम की ये जो सर के बाल थे वो जन्नत के एक दरख्त में लटक गए, और आपके जिस्म पे जो जन्नत का लिबास था वो उतर गया। शर्मिंदगी की वजह से दरख्त के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे, क्योंकि हया जो है वो इंसान की तबीयत के अंदर है, फितरत में हया है। बेलिबास होना जो है ना, ये फितरत के खिलाफ है, ये जानवरों की हुए है। जो लिबास पहनता है, जो अपने आप को छुपाता है, असल में वो फितरत और नेचर के करीब है। अब वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ही तकलीफ़ हुई कि अल्लाह ताला मैंने क्या किया, इतनी ना शुक्री कि इतना कुछ मिलने के बाद मैं तुझे नाराज़ करने वाला बन गया। शर्मिंदगी हुई, अल्लाह ताला से पूछा। बल्कि इस पे एक रिवायत भी आती है, अरबी की कोटेशन थी पूरी उसमें, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के साथ किस तरह बातचीत की कि अल्लाह तूने मुझे इतना कुछ दिया लेकिन मैंने क्या किया, और क्या अल्लाह ताला तेरा नाम रहमान नहीं, तेरी रहमत तेरे गज़ब पे भारी है, क्या तू तौबा करने वालों को माफ़ नहीं करता। यानी इस तरीके से शर्मिंदगी का एहसास रखा उन्होंने कि अल्लाह ताला से उन्होंने कुछ कलमे सीख लिए। आदम आदम मिर रब ही, अपने रब से कलीमात, इन चंद बातें। कौन से थे ये कलमे? ये सूरत अल आराफ ही के अंदर आते हैं, आयत नंबर 23 में, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अगर तू हमें बख्शेगा ना और हम पे रहम ना करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। और इस तरह फताब अलई, वो उस पे पलट आया। तौबा का लफ्ज़ जब अल्लाह ताला के लिए आए तो तौबा कबूल करना, और जब बंदे की तरफ से आए तो तौबा करना, असल मानी होता है रुजू करना। जब तौबा की निस्बत बंदे की तरफ की जाती है तो इसके मानी तीन चीज़ों का मजमुआ होता है, लिखिएगा आप, यानी दोहराती हैं अपनी बात को, कि जब तौबा का लफ्ज़ इंसान की तरफ से होता है ना, कि मैं तौबा करता हूँ, इन्नी तुबतु इलैक, हाँ, तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक, अपने किए हुए गुनाह को गुनाह समझना और उस पर शर्मिंदा होना, ठीक है, जो गुनाह हुआ उस पर नदामत हो और शर्मिंदगी हो। दूसरी चीज़ इसमें होती है कि इस गुनाह को बिल्कुल छोड़ देना, लीव इट। और तीसरी इसमें चीज़ होती है आइंदा के लिए दोबारा ना करने का पुख्ता अज़्म करना, इरादा करना। इन तीन चीज़ों में से अगर एक भी कमी हुई तो वो तौबा नहीं होती। इससे क्या पता चला? कि सिर्फ ज़ुबान से लफ्ज़ तौबा कह देना या तौबा तौबा करते जाना, ये असल में तौबा नहीं है। निजात के लिए लाजिम है कि इंसान अपने पिछले गुनाहों पे शर्मिंदा हो। अन नदमुत तौबा, एक हदीस का खुलासा है कि नदामत ही तौबा है। अगर दिल में शर्मिंदगी नहीं है ना, तो आप 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें, आप वो तौबा नहीं होगी। फिर फौरन उस गुनाह को छोड़ें, फिर भी नहीं छोड़ते तो भी तौबा नहीं। ये तो ऐसे ही कि आप कहते हैं अब नहीं करूँगा, अल्लाह ताला पिछला माफ़ कर दे। तौबा और इस्तग़फ़ार अपने लफ्ज़ों में क्या है कि अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा, और साथ करता भी जाए। सोचिए ज़रा, कोई घर गंदा करे, मिट्टी डाल रहा है, आप उसको डांटें और साथ कहता जाए अम्मी अब नहीं करूँगा, और दूसरे हाथ से फिर मिट्टी वहाँ कारपेट पर डालता ही जाए, आप क्या समझेंगे इसको? ये तौबा नहीं होती। और तीसरी बात है कि आइंदा बिल्कुल नहीं करना। ये तीन काम होंगे तो अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल कर देता है। गोया कि आप कह सकते हैं कि तौबा में ज़माने के तीनों दौर शामिल हो जाते हैं, माजी, पास्ट, शर्मिंदगी के साथ कि अल्लाह मैंने क्या किया, इतने साल मैंने ऐसे ही गुजार दिए, इतनी तेरी नेमतें खा के मैंने कितनी नाफरमानियाँ की, बंदे का सर ना उठे। देखिए, जिसने किसी का कोई जुर्म किया होता है, किसी की कोई चोरी की होती है, उसके सामने सर नहीं उठता। जिस बंदे को अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है, फिर आप सोचिए कि एक बंदा के अल्लाह के सामने खड़ा हो सकता है, ये तो पता नहीं है ना, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। फिर इंसान हाल से इसका ताल्लुक है कि अब फ़ौरन छोड़ रहे हैं, लीव इट, अभी स्पॉन्टेनियसली, इंस्टेंटली, फ़ौरन से पहले छोड़ दिया। और तीसरी बात मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है कि अब आइंदा भी कभी नहीं करूँगी। और जब इसका ताल्लुक़ अल्लाह की तरफ आए, ताब अलई, तो मतलब क्या है कि अल्लाह तौबा कबूल करता है। किसी ने पूछा कि जब किसी से कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो मैं क्या करूँ? कहा वही करो जो तुम्हारे माँ बाप आदम और हव्वा ने किया, अपने किए पर नदामत और आइंदा न करने का अज़्म और अल्लाह से माफ़ी तलब की। और इस तरह अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी गुनाह हो गया था और उन्होंने भी अल्लाह ताला से यही कहा था कि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पे जुर्म किया या मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, बस मुझे बख्श दे। और इस तरह अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया था। सूरत अंबिया में आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा का भी तस्करा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आयत 78 में आता है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। इसमें असल बात है इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह मैं जालिम हूँ। तो जब तक एक बंदे को अपने जुल्म का यकीन ना आए, उस वक्त तक वो तौबा ही नहीं हो सकती। अल्लाह ताला कहते हैं कि जाओ, तुम्हें मैंने माफ़ किया कैसे, फताब अलै, या फिर एक छोटा सा नुक्ता आ गया, अलै ही आया है और ही है उसको, आदम को बस माफ़ किया, हवा को नहीं किया। अगर ग्रामर की इस्तेलाह से देखें तो फताब अलैहिमा आना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है कि कुरान पाक के बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो मुज़क्कर बोलकर उसमें मुअन्नस को भी शामिल किया जाता है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ये तो नहीं कहा जाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू वल मोमिनात, ए ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों। तो इसकी एक तो राय यही दी जाती है कि आदम की तौबा ही में हव्वा की तौबा की बात कर दी गई। दूसरी इसकी एक और तफसीर की जाती है कि औरत चूँकि पर्दे की चीज़ है, तो अल्लाह ताला ने उसका यहाँ तज़करा उसका ऐब छुपाने की वजह से किया। अच्छा, फिर इसके बाद जो ये बात आती है ना, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। तो फ़र्क पता होना चाहिए ताबा और तव्वाब का। तो आप तव्वाब और ताइब में फ़र्क देखेंगे। तव्वाब क्या है? बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। इमाम कुर्तुबी हैं, बहुत ही प्यारी इनकी किताबें हैं अरबिक लैंग्वेज में, तो वो कहते हैं कि तव्वाब बंदे के लिए भी बोला जाता है। जैसे इन अल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है। और अल्लाह ताला के लिए भी है, जैसे यहाँ आया हुव तव्वाबुर्रहीम। बंदे के लिए जब तव्वाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद है गुनाह से इतात की तरफ रुजू करने वाला, और जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है तो मानी होता है तौबा कबूल करने वाला। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि तव्वाब लफ्ज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ताइब की निस्बत। इससे एक बहुत ही प्यारी बात पता चली, क्रिश्चियनिटी का एक नज़रिया है पार्डन का, जानते हैं आप कुछ उसके बारे में, कफ़ारे का नज़रिया। वो कहते हैं कि हम जितने भी गुनाह करते हैं उसके बाद प्रीस्ट के पास जाते हैं और तौबा ख़रीदते हैं। आपको पता है वहाँ माफ़ी बिकती है, पार्डन ख़रीदते हैं, जितने पैसों की तौबा ख़रीदनी है ख़रीद लो। और वो कहते हैं कि गुनाहों की माफ़ी उनसे है। इसी तरह बास कहते हैं कि जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों के कफ़ारे में सूली पे चढ़ गए। ये आयत उसकी भी दलील है कि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को है। कोई किसी दूसरे पीर, किसी बुज़ुर्ग, किसी पादरी, किसी बड़े सेंट के पास जा के अपने गुनाह माफ़ नहीं करवा सकता। फिर फरमाया कुल नहवितु मिन्हा जमीया, हमने कहा उतर जाओ सब इसमें से। अब देखिए कि पीछे भी गुजर चुका ना नहवितु, पहला इखबात क्या था, जन्नत से आसमाने दुनिया पे आए, और दूसरा अब इखबितु जो आया ये है कि अब आसमाने दुनिया जो हमारा पहला आसमान है वहाँ से ज़मीन पे आए। और बास कहते हैं कि ये तकरार के लिए, शिद्दत के लिए इस हुक्म की कि बस निकल जाओ, मिनहा जमीया, सब के सब निकल जाओ। अब ये कौन निकले, इहबितु है ना तो जमा है। अब चूंकि आपने अभी ग्रामर नहीं पढ़ी ना तो आपको फ़र्क नहीं लगता, लेकिन उर्दू तर्जमे से तो समझ आता है ना कि तुम सब निकल जाओ। तो यहाँ तो फिर आदम और हव्वा होते तो ये आना चाहिए था कि कुल नहबिता, तुम दोनों निकलो। तो इसकी वजह ये है कि बास कहते हैं कि फिर आदम भी गए, हव्वा भी गई, साथ ही शैतान को भी ज़मीन पर फेंका कि जाओ अब तुम सारे वहाँ आपस में निपटो, क्योंकि पीछे कहा था कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो लिहाजा सबको दुनिया में निकाल दिया। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फ़इम्मा फिर अगर या जब, यातियन्नकुम पहुँचे तुमको, कुम कौन है, सभी को पहुँचती है, आदम हव्वा और उनकी नस्लों को और शैतान तक भी आती है, लेकिन वो कबूल नहीं करता। मिन्नी मेरी तरफ से, इससे पता चलता है कि हिदायत का सोर्स अल्लाह की ज़ात है। मिन्नी इन्नल हुदा हुवल हुदा, हिदायत अल्लाह ही के पास है। कोई और दूसरा कोई पैकेज नहीं दे सकता कि इसको फॉलो करोगे तो हिदायत वाले बन जाओगे। हुदन हिदायत यानी शरीयत, इस्लाम, किताबें। फिर फमन तविया हुदाया, फिर जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की। फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना कोई उन पर खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। यहाँ दो दफ़ा लफ्ज़ खुदा का आया है, आगे भी आएगा। 17 मानों में इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में खुदा। यहाँ नहीं लिखाऊंगी, सारे परेशान हो जाएंगे, आगे जाके लिखा दूंगी इंशाल्लाह। और हर जगह मुख्तलिफ मानों में आता है कि जब मेरी तरफ से हिदायत यानी किताबें आएंगी, फिर जिसने हिदायत की पैरवी की तो उसको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। यानी आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतार दिया, निकल जाओ इसमें से। क्यों उतरो, क्या सज़ा थी? यहाँ चंद गलत फहमियों का इजाला लाजमी है। पहली बात यह है कि दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम का आना सज़ा के तौर पर नहीं था। बहुत सारे लोग कह देते हैं ये बात कि सज़ा पे आए थे, अब भुगत रहे हैं। सज़ा नहीं थी, देखिए अल्लाह ने माफ़ करके भेजा। पहले लफ्ज़ गुजर गया कि फताब अलै, बल्कि दुनिया में आने का मकसद क्या था? अल्लाह के मंसूबे की तकमील। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, उनको पैदा ही दुनिया के लिए किया गया था। तो अगर ये सज़ा के लिए होता तो फिर इसका अंदाज़ कुछ और होता, क्योंकि साथ ही कह दिया ना, फ़ाइम याती यन्नकुम, जब आए तुम्हारे पास कोई नसीहत तो मानोगे। यानी अब जन्नत का रास्ता बदल दिया। पहले तो बस ट्रायल पे जन्नत मिल गई, एक सवाल के जवाब पे जन्नत मिल गई। अब जन्नत में जाने का द ओनली वन ट्रैक, ओनली सिंगल ट्रैक, एक ही रास्ता है। बहुत सारे रूट्स नहीं है कि इधर से E6 ना ली तो कोई दूसरी ले ली और तीसरी ले ली। एक ही रास्ता है, और वो क्या है, हाईलाइट कर लीजिए, तबिया हुदाश। ये दो लफ्ज़ हैं इसमें, तबिया उसने पैरवी की, हुदाया मेरी हिदायत की, गाइडेंस की। हर बंदा कहता है मेरी गाइडेंस ही ठीक है, हर एक को जो बात समझ आती है वो कहता है यही है स्ट्रेट पाथ। का नहीं, रास्ता मेरा है, मैं बताऊंगा। जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका मैंने बताया, जो मैंने इंसान को सिखाया, वही है असल में उसके लिए हिदायत की चीज़ें। उस पे चलेगा तो फ़ायदा क्या होगा? फला खौफ अलैहिम, कोई गम नहीं, खौफ कोई नहीं होगा इंसान को। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है, फ्यूचर से होता है। और वला हुम यहज़नून, और उनको कोई हुज़न नहीं होगा। हुज़न माजी का होता है, यानी जो एक दफ़ा इस किताब हिदायत पे अमल करने लग जाएगा उसको ना तो मुस्तकबिल का गम रहेगा, कल क्या होगा कैसे होगा, हत्ता कि उसको अपनी आखिरत का भी फिक्र नहीं रहता। जो अपने काम में लग जाता है ना, जो काम अल्लाह ने उसको दिया वो करता जाए, उसके बाद उसको किसी तकलीफ़ और मुसीबत का कोई अंदेशा नहीं होता। और रह गया हुज़न, पिछली ज़िंदगी में क्या किया, हाय क्या किया, इसका भी गम नहीं होता। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जो चीज़ें वो छोड़ता है उसको उसका भी गम नहीं रहता। ऐश और आराम और राहत जो छोड़ता है, अपनी नींद जो छोड़ता है, वो सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं। सूरत यूनुस में भी आप पढ़ेंगे कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ही ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के जान लो कि अल्लाह के दोस्त वो होते हैं कि जिनको ना कोई गम होता है और ना खौफ होता है। आज इंसानियत को यही दो जर्म्स लगे हुए हैं। आज गौर से देखें ना तो पूरे ग्लोब के ऊपर या तो फियर है, टेरर है, खौफ, कहीं जंगों का खौफ, कहीं माल की कमी का खौफ, कहीं कोई और फितना, कहीं कोई रेडिएशंस का खौफ, कहीं बमों का खौफ, और या फिर अंदेशे हैं, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं दुनिया के ख़जाने ख़त्म ना हो जाए, पानी ना ख़त्म हो जाए, ये ना हो जाए। आज दुनिया पीस के लिए क्या कुछ करती है? आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे खित्ते मौजूद हैं, टेंशन फ्री जोन्स। उन्होंने उसको फुली इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है कि उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है, हर वो चीज़ जो अच्छी है, वहाँ आप जाके सांस लेते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। और वहाँ दाखिल होने के बाद घंटों के अतबार से वो आपको चार्ज करते हैं, डॉलर्स में आपको एक एक घंटे का चार्ज करने पड़ते हैं। और क्या होगा, जिसका दिमाग ही परेशान है वो वहाँ जाके भी क्या खुश होगा? चले थोड़ी देर बहल ही गए आप थोड़ी फैंटेसीज़ के अंदर, बाहर आएंगे तो वही है। लेकिन अल्लाह ने हम सबके सामने खुश रहने का नुस्खा दे दिया। अगर कोई बंदा खुश रहना चाहता है ना, देखिए असल खुशी जन्नत में है। ये दुनिया की चीज़ ही नहीं है। जैसे आप कहना कि ये फलां चीज़ तो नॉर्वे में मिलती नहीं है, कोई बाहर से ले आए, थोड़ी मिल जाए, महंगी मिल जाए, कोई बैन ही कर दे गवर्नमेंट के, ये चीज़ यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है। इसी तरह खुशी दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। हाँ, अल्लाह ने इसका एक छोटा सा ट्रायल ट्रेलर, इसकी छोटी सी फ्री पैकिंग कह लें, या दुनिया में एक रखी है कि तुम चखो तो सही खुशी क्या है, और वो कहाँ है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नल क़ुलूब, जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र में, अल्लाह ही की याद में दिलों को सुकून मिलता है। जो खुशी इस किताब से जुड़ने के बाद मिलती है, वो इसके बगैर नहीं मिल सकती। एक बंदा जब अल्लाह ताला की तरफ आता है, तो उसको इसका भी गम नहीं रहता कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या होने वाला है। फिर आप देखिए कि यहाँ एक एक लफ्ज़ पे आप गौर किया करें कि कितने मानी होते हैं। हुम का लफ्ज़ यहज़नून के साथ तो आया है, लेकिन खौफ उनके साथ नहीं आया। आयत को देखिए, फला खौफ अलैहिम, उन पे कोई खौफ नहीं है, ठीक है। यानी खौफ की नफी तो आम अंदाज में कर दी, लेकिन वला हुम यहज़नून ये नहीं कहा कि ला हुज़्ना अलैहिम, बल्कि वला हुम यहज़नून करा। क्यों? इसलिए कि शिद्दत की बात है। इशारा कर दिया कि किसी चीज़ या मुराद के फौत होने के गम से आज़ाद होना सिर्फ अल्लाह के दोस्तों के मुकद्दर में है। जो बंदा अल्लाह की तरफ आएगा, उसको अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से बेगम कर देंगे। इसीलिए सूरत फातिर में आता है कि जब जन्नती जन्नत में पहुँचेंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने हमसे गम दूर कर दिया। तो गम से दूर होने के लिए अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा रहते थे, परेशान रहते थे। क्यों? आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपके तो सारे गुनाह माफ़ कर दिए, फिर आप क्यों परेशान रहते हैं? तो आपने कहा कि आखरत के जो मामलात मुझे पता हैं, अगर तुम्हें पता चले तो तुम जंगलों में निकल जाओ, तुम अपने बिस्तरों पे लज्जत लेना छोड़ दो। क्योंकि जिसको जितनी समझ आ जाती है ना, वो उतना तड़पता है। इसी तरह वो लोग जो कुरान से दूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वो बड़े खुश हैं, वो मुतमईन हैं। उन्होंने सोचा हुआ है कि देखना मुसलमान होने की वजह से जन्नत मिल जाएगी, लेकिन आप जितना कुरान की तरफ आएंगे, जितनी इसकी मानी तफसीर समझ आएगी, उतनी इंसान की ज़िंदगी में फ़िक्र पैदा होती है। अच्छे तो हम तब थे जब कुछ नहीं जानते थे, बुरे तो अब हम बने जब हमें बुराइयों का पता चला। देखिए, ना समझी बहुत बड़ी नेमत है। बच्चा ना समझ होता है ना, वो मैला फिरे, गंदा फिरे, उसको कोई परवाह नहीं, लोग उसको देख कैसे हैं, वो कहते हैं मुझे क्या। इसी तरह वो लोग जो इस किताब हिदायत से दूर है ना, उनका भी यही हाल होता है कि वो अपने आप को बड़े खुश रखते हैं, लेकिन जितना कुरान की तरफ आते हैं उतना पता चलता है। फिर शर्मिंदगी, फिर एहसास होता है कि अल्लाह मैंने क्या किया, फिर शर्मिंदगी। हम सब अपने आप को चेक करें, कब आखिरी दफ़ा मैं अपने किसी गुनाह को सोच के पसीने पसीने हो गई, शर्मसार हो गई। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है ना कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क के इन फयाल के, यानी गुनाहों की शर्मिंदगी से जो मुझे पसीना आया, अल्लाह ने उसको चुन लिया। फताब अलई, अल्लाह बंदे की शर्मिंदगी को कबूल करता है। और जो बंदा गुनाह करके डट जाता है ना, वो बड़ा बुरा है, और जो गुनाह करके पलट आता है ना, वो अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। एक बड़ी प्यारी रिवायत है अल्लाह के नबी की, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की तमाम औलाद खताकार है, व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, और सबसे बेहतरीन खताकार यानी मिस्टेकर्स कौन है? जो तौबा कर लें। तो हम सब के लिए इस पूरे सबक में यही खुलासा है कि अब अगर जन्नत में जाना है तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है अपने पिछले गुनाहों पे शर्मिंदगी का। आज जाके अगर दो नफिल पढ़ के रो सके ना अल्लाह के आगे कि अल्लाह इतनी देर से क्यों पता चला, और पिछले के गुनाह को याद करके रोएं, इतना रोएं, इतना रोएं कि वाकई अल्लाह ताला आपके दिल में डाल दे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। और दूसरा इसका रास्ता है, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिय हुदा, इस किताब हिदायत को पकड़ लें, हाथों से पकड़ें, दांतों से पकड़ें, या आपके हाथों से फिसलेगा, आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरे से इतना सब्र नहीं होता, बस जब फिसलने लगे फिर पकड़ लें कि नहीं, यही मेरे जन्नत में जाने کا ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ جب برائی کا یا بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو اس وقت پھر ایک انسان اللہ کی رحمت سے اس کی طرف آنے لگتا ہے. ورنہ والذین کفروا, اور جو کفر کریں گے, وکذبوا بآیاتنا, اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے, اولئک اصحاب النار, وہ آگ میں جانے والے ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو ایک طرف جنت میں جانے کا راستہ اور دوسری طرف تکذیب کا راستہ ہے. جو جہاں جانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادھر ہی جانا آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے. حقیقت میں جنت کا راستہ نفس کشی کا راستہ ہے. ایک دفعہ اس راستے پہ چڑھ گئے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ لذت ملے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں تلاوت سنیں گے.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها